اچھا بھائی آگے سبق دیکھیے بھائی، شرح دیکھیے. قوله فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة إلى آخره قد يكون الحكم في القضية الموجهة بأن النسبة الثبوتية أو السلبية ضرورية أي ممتنعة الانفكاك عن الموضوع على أحد أربعة أوجه. الأول أنها ضرورية ما دام ذات الموضوع موجودة نحو كل إنسان حيوان بالضرورة ولا شيء من الحجر بإنسان بالضرورة فيسمى القضية حينئذ ضرورية مطلقة. اچھا بھائی، گزشتہ سبق میں ہم نے موجہات کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نفس الامر اور واقع میں ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے، یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے، اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی. مثلا واقع کے اندر زید کھڑا ہے، نفس الامر میں زید کے لیے قیام ثابت ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی. یہ قیام یا تو زید کے لیے ضروری ہوگا، یا یہ قیام یا زید کے لیے ممتنع ہوگا، یا یہ قیام جو ہے زید کے لیے ممکن ہوگا، پھر یہ قیام یا تو زید کے لیے دائمی ہوگا یعنی تمام زمانوں میں، یا یہ قیام جو ہے زید کے لیے بالفعل ہوگا یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں. تو نفس الامر اور واقع میں توجہ ہے. ایک تو میں قضیہ بولتا ہوں زید قائم، قضیہ کو نہ دیکھیں، نفس الامر اور واقع کو دیکھیں. واقع میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا جو ثبوت ذکر ہو رہا ہے، یا ایک چیز کے لیے جو دوسری چیز کا سلب ذکر ہو رہا ہے، تو نفس الامر اور واقع میں اس نسبت کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی. یا تو یہ نسبت کیا ہوگی، ضروری ہوگی، یا ممتنع ہوگی، یا ممکن ہوگی، یا دائمی ہوگی، یا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگی. تو جو نفس الامر میں جو نسبت کی کیفیت ہے اس کو مادہ قضیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مادہ قضیہ کہتے ہیں. اور اسی نسبت کو قضیہ کے اندر بھی ذکر کر دیا جائے تو اس کو جہت قضیہ کہتے ہیں. ایک ہے مادہ قضیہ اور ایک ہے جہت قضیہ. جہت قضیہ دال ہے اور مادہ قضیہ اس کا مدلول ہے. جیسے لفظ زید، جیسے ہی میں نے لفظ زید کہا آپ کے ذہن میں، مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام زید ہے، فوراً اس کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی، تو دیکھو لفظ زید نے ذات زید پر دلالت کی. اسی طرح ایک ہے جہت قضیہ اور ایک ہے مادہ قضیہ. جہت قضیہ جو ہے وہ دال ہے اور مادہ قضیہ مدلول ہے. تو نفس الامر میں اور واقع میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت ہو، یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہو، اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی. اور وہ کیفیتیں تو پھر بہت سی ہیں، جہتیں بہت سی ہیں، لیکن جو مناطقہ کے نزدیک معتبر ہیں وہ چار ہیں بھائی. اور ان چار کو وہ بالضرورت، بالامکان، بالدوام اور بالفعل کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. کون کون سی جہتیں معتبر ہیں مناطقہ کے نزدیک؟ چار. نمبر ایک، بے ضرورت، یعنی جب وہ نسبت ضروری ہو، لازمی ہو، تو اس کے لیے وہ بے ضرورت کا لفظ بولتے ہیں. جیسے کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے. دیکھو ہر انسان کے لیے حیوان ہونا ضروری ہے. نفس الامر اور واقع میں جو بھی انسان ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا، کیونکہ حیوان اس کی ذات میں داخل ہے، اس کی حقیقت کا جز ہے. ہر انسان حیوان ناطق ہے، حیوان اس سے جدا ہو ہی نہیں سکتا. حیوان جدا ہوگا تو انسان ہی نہیں رہے گا بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نفس الامر اور واقع میں ایک چیز کا اثبات ہو دوسری چیز کے لیے، یا ایک چیز کی نفی ہو دوسری چیز سے، اس کو مادہ قضیہ کہتے ہیں. اور اسی کیفیت کو اگر قضیہ میں بھی ذکر کر دیا جائے تو اس کو جہت قضیہ کہتے ہیں. تو جہت قضیہ ہے دال، اور مادہ قضیہ اس کا مدلول جو نفس الامر اور واقع میں ہے. جیسے ایک ہے لفظ زید، ایک ہے ذات زید. لفظ زید ہے دال، اور ذات زید کیا ہے؟ مدلول ہے، وہ اس پر دلالت کر رہا ہے. और फिर कजियत आपने पढ़ा दो किस्म पर है, एक कजिया मलफूजा है और एक कजिया माकूला। हम जो भी जुबान से बोलते हैं पहले जहन में उसका तस्वूर करते हैं और फिर जुबान से उसको अदा करते हैं, बल्कि जहन में बहुत सी ऐसी बातें कि वो हम जुबान से तलफ्फुज़ ही नहीं करते, जहन में आई जहन में ही रही और खत्म भी हो गई। तो गोया हमारा कौल दो किस्म का हुआ, एक कौले मलफूज हुआ और एक कौले माकूल। कौले मलफूज वो है जिस पर हम जुबान से तलफ्फुज़ करते हैं, और कौले माकूल वो है जो जहन में है। जैसे मैंने कहा ज़ैदुन क़ाइमुन, पहले मैंने यही ज़ैदुन क़ाइमुन इसका तस्वूर किया जहन में कि जैद के लिए क्या साबित है, क़याम साबित है, और फिर मैंने लफ्जों में भी उसको जिक्र कर दिया ज़ैदुन क़ाइमुन। तो क़ज़िया गोया एक मलफूजा हुआ और एक माकूला। तो क़ज़िया मलफूजा के अंदर जो लफ्ज उस कैफियत पर दलालत करे उसको क्या कहते हैं, जिहत। क़ज़िया मलफूजा में जो लफ्ज क्या करे, दलालत करे उस कैफियत पर। मसलन हर इंसान के लिए हैवान होना जरूरी, तो मैं यूं कहता हूं कुल्लु इंसानिन हैवानुन बिज़रूरती, हर इंसान के लिए हैवान होना जरूरी है, लाजमी है, उससे जुदा नहीं हो सकता। हैवान नहीं होगा तो इंसान ही नहीं रहेगा भाई। तो बिज़रूरत के साथ मैंने इसको जिक्र किया, तो यह बिज़रूरत कजिया मलफूजा में जो मैंने जिक्र किया इसे क्या कहेंगे, जिहत कजिया। और इसी का मैंने जहन में भी तस्वूर किया था, यानी वो जो सूरत अकलिया जो इस जिहत पर दलालत कर रही थी उसको भी क्या कहेंगे, जिहत कजिया। क्यों, कजिया मलफूजा में जिहत पर लफ्ज दलालत करेगा और कजिया माकूला यानी जहन में कोई सूरत इस पर दलालत करेगी। भाई हमारे जहन में जो भी किसी चीज की पहचान है उसको सूरत कहते हैं, जैद की भी एक सूरत है, कलम की भी सूरत है, यानी जो जो पहचान किसी चीज की हमारे जहन में है उसको उस चीज की सूरत कहते हैं। सूरत ये जो उर्दू में तस्वीर आप इसको जिसको कहते हैं वो नहीं मुराद भाई, बस चीजें आपने देखी भी नहीं होती लेकिन आपके जहन में उसकी सूरत होती है। मसलन मसलन मक्का मुकर्रमा, मक्का मुकर्रमा आपको पहचान है या नहीं, पहचान है, आपको पता है कि मक्का मुकर्रमा एक शहर का नाम है जहां बैतुल्ला वाकई है। तो अब आपने देखो मक्का मुकर्रमा को नहीं देखा हुआ लेकिन आपके जहन में उसकी सूरत है, क्या माना, यानी उसकी पहचान है, आपको इतना पता है ये एक शहर का नाम है। तो सूरत अकलिया से क्या मुराद है, एक चीज की पहचान। तो लिहाजा जब मैंने जैद के बारे में कयाम का तस्वूर किया तो साथ उस कैफियत का भी तस्वूर कर लिया, तो जो भी चीज उस कैफियत पर जहन में दलालत कर रही है उसको क्या कहेंगे, सूरत अकलिया। मसलन जैदुन काइमुन बिज़रूरती, ये तो मैंने लफ्जों में कहा, जहन में भी जैद पर कोई सूरत दलालत कर रही होगी, काइमुन इस पर भी कोई सूरत दलालत कर रही होगी, और ये जो जिहत है इस पर भी कोई सूरत, तो जैद पर जो दलालत कर रही है वो भी सूरत अकलिया, जो कायमुन पर दलालत कर रही है वो भी क्या है, सूरत अकलिया, और जो उस कैफियत पर दलालत कर रही है वो भी क्या है, सूरत अकलिया। बात समझ में आ गई, तो सूरत अकलिया से आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज है, भाई ये वही जो हमारे जहन में इसकी पहचान है, यानी जुबान से अदा करें तो वो लफ्ज होगा लेकिन जहन में तो लफ्ज नहीं, लफ्ज तो तब है जब हम उसको जुबान से अदा कर देंगे, तो जहन में जो है इसको फिर सूरत अकलिया कहेंगे, क्या कहेंगे, सूरत अकलिया। तो नफ्सुल अमर और वाकई में एक चीज का सबूत हो दूसरी चीज के लिए या एक चीज की नफी हो दूसरी चीज से, उसकी कोई ना कोई कैफियत जरूर होगी, और यही कैफियत जो है अगर कजिया मलफूजा में जिक्र कर दी जाए तो इसको क्या कहेंगे, जिहत, और यही कैफियत अगर कजिया माकूला में भी मलहूज है, यानी वो सूरत अकलिया, वो सूरत अकलिया जो उस कैफियत पर दलालत कर रही है वो अगर कजिया माकूला में भी मौजूद है, जहन में भी मौजूद है, तो उसको क्या कहेंगे, जिहत। कजिया मलफूजा में वो लफ्ज होगा जो जिहत पर दलालत कर रहा है और कजिया माकूला में वो सूरत अकलिया होगी जो उस कैफियत पर दलालत करेगी, तो उसको जिहत कहेंगे। मान हुआ जिहत सिर्फ वो लफ्ज का नाम नहीं बल्कि जिहत लफ्ज भी हो सकती है और सूरत अकलिया भी हो सकती है। बहरहाल कोई ना कोई चीज हो जो उस कैफियत पर दलालत करे कजिए के अंदर, तो उस कजिया को फिर मुवज्जहा कहते हैं, और नीज उसका दूसरा नाम रुबाइया भी है, इसलिए क्योंकि आप कजिए के चार जुज हो गए। वैसे तो कजिया हमलिया के आपने पढ़ा था तीन जुज हैं, موضوع محمول اور رابطہ، موضوع محمول اور رابطہ، اور یہ چوتھی چیز جہت بھی آ گئی، تو اب قضیے کے چار جز ہو گئے، موضوع محمول رابطہ اور جہت، تو اب اس کو قضیہ رباعیہ کہیں گے. تو جس قضیے کے اندر جہت مذکور ہو، چاہے وہ قضیہ ملفوظہ ہو چاہے قضیہ معقولہ، اس کو قضیہ موجہہ کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ قضیہ رباعیہ، بھائی یعنی چار جز والا قضیہ. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ایک ہے عنوان موضوع اور ایک ہے ذات موضوع. بھائی موضوع کو جس لفظ سے ذکر کیا جائے، جس لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جائے، اس کو عنوان موضوع کہتے ہیں یا وصف موضوع کہتے ہیں، اور جس ذات پر وہ دلالت کرتا ہے، یعنی جو موضوع کی جو ذات ہوتی ہے نفس الامر اور واقع میں، اس کو ذات موضوع کہتے ہیں. جیسے میں نے کہا زید قائم، تو دیکھو جیسے ہی میں نے لفظ زید کہا، زید کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی، تو یہ ذات زید کو میں نے کس لفظ سے تعبیر کیا؟ زید لفظ سے. کس سے؟ لفظ زید سے. تو یہ جو لفظ زید ہے اس کو کہیں گے عنوان موضوع، یہ یوں کہیں گے یہ ہے وصف موضوع، اور جو زید کی ذات ہے اس کو کہیں گے ذات موضوع. بھائی تو موضوع کو جس لفظ سے تعبیر کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذات موضوع اور وصف موضوع. اور یاد رکھنا اسی کو وصف عنوانی بھی کہتے ہیں، اسی ذات موضوع اور وصف موضوع اسی کو وصف عنوانی بھی کہتے ہیں، یعنی عنوان والا وصف، وصف عنوانی. زید قائم، میں نے ذات زید کو کس لفظ کے ذریعے ذکر کیا؟ لفظ زید کے ذریعے. تو یہ لفظ زید جو ہے وصف عنوانی ہے، یہ یوں کہو یہ عنوان موضوع ہے، یہ یوں کہو یہ وصف موضوع ہے. وصف موضوع کہہ لیں، عنوان موضوع کہہ لیں، یا وصف عنوانی کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو عنوان موضوع ہے، کبھی یہ موضوع کا عین ہوتا ہے، کبھی موضوع کا جز ہوتا ہے، اور کبھی موضوع سے خارج ہوتا ہے، یعنی اس کا وصف ہوتا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کل انسان حیوان، ہر انسان کیا ہے؟ حیوان. میں نے موضوع کے لیے کون سا لفظ ذکر کیا؟ انسان. تو یہ جو انسان ہے یہ ہے وصف عنوانی، یہ یوں کہیں یہ ہے عنوان موضوع، یہ یوں کہیں یہ ہے وصف موضوع. بھائی وصف موضوع، دیکھو لفظ انسان کہا تو اس کی پوری حقیقت آ گئی، کیونکہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو یہ لفظ انسان کہہ لیں یا حیوان ناطق کہہ لیں، بات ایک ہی ہے. تو دیکھو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، اور لفظ انسان اس پورے پر دلالت کر رہا ہے. تو جب میں نے کہا کل انسان حیوان، تو ذات موضوع جو ہے اس پورے پر دلالت ہو گئی، یعنی پوری ذات موضوع یہاں ذکر ہو گئی. تو کل انسان حیوان، یہاں دیکھو عنوان موضوع، یا یوں کہو وصف عنوانی جو ہے وہ عین موضوع ہے، اور کبھی عنوان موضوع جز موضوع ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کل حیوان حساس، یا کل حیوان ماشن، ہر حیوان حساس ہے، یا یوں کہوں ہر حیوان ماشی ہے، اپنے پیروں پر چلنے والا ہے. اب خارج میں جو حیوان کے افراد ہیں، یہ حیوان ان کی حقیقت کا جز ہے، پوری حقیقت نہیں، کیونکہ خارج میں حیوان کے افراد یا تو انسان ہیں، یا گائے بیل بکری ہے، یا گھوڑا ہے، گدا ہے وغیرہ، لیکن جتنے بھی حیوانات ہیں ان سب میں یہ حیوان ان کا ایک جز ہے، اور اس ساتھ فصل بھی چاہیے. حیوان کے ساتھ ناطق ملایا تو کیا بنا؟ انسان. حیوان کے ساتھ ساحل ملایا تو کیا بنا؟ گھوڑا. حیوان کے ساتھ ناہق ملایا تو کیا بنا؟ گدھا. تو معلوم ہوا حیوان کے جو افراد خارج میں ہیں، یہ حیوان ان کی پوری حقیقت نہیں بلکہ حقیقت کا جز ہے. تو دیکھو جب میں نے کہا کل حیوان حساس، ہر حیوان حساس ہے، تو یہ جو میں نے عنوان موضوع ذکر کیا، یہ عین موضوع نہیں بلکہ موضوع کا جز ہے. اور کبھی جو عنوان موضوع ہوتا ہے وہ ذات موضوع سے خارج ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کل کاتب متحرک الاصابع، ہر کاتب جو ہے اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں، جو بھی اپنے ہاتھ کے ذریعے لکھتا ہے اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں. मसलन लिखने वाला इंसान है तो इंसान उसकी हकीकत तो हैवान नातिक है, लेकिन मैंने क्या जिक्र किया, कुल्लो कातिबिन, कातिब के साथ उसको जिक्र किया, तो ये कातिब इंसान की न पूरी हकीकत है न जुजे हकीकत है बल्कि उसकी हकीकत से खारिज है। तो उन्वान मौजू कभी आयन मौजू होता है, कभी जुज मौजू होता है और कभी वस्फ मौजू होता है, या यूं को खारिज होता है मौजू से, यानी उसकी न पूरी हकीकत होता है और ना हकीकत का जुज होता है। और मैंने आपको वजह भी बतलाई थी कि उन्वान मौजू को उन्वान क्यों कहते हैं, जैसे मजमून के ऊपर उन्वान होता है वो पूरे मजमून की खबर दे देता है, उससे मजमून का पता चल जाता है, या जैसे उन्वान का माना अगर पते के कर लें, पता खत के ऊपर उन्वान होता है यानी पता लिखा होता है, इस खत के ऊपर जो उन्वान होता है उससे उस शख्स का पता चल जाता है जिसको यह खत भेजा गया है, तो इसी तरह उन्वान मौजू से भी जात मौजू का पता चल जाता है। मैंने जैसे ही जैद कहा फौरन जात जैद उसकी सूरत आपके जहन में आ गई। तो उन्वान मौजू को उन्वान क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पता बतलाता है किसका, जात मौजू का, इसके जरिए जात मौजू समझ में आती है। और फिर मैंने आपको यह भी बतलाया था कि जो मुअज्जहात हैं ये बहुत सारे हैं, लेकिन मनातिका के नजदीक जो मुअतबर हैं इनमें वो सिर्फ चार जिहतें हैं जिनको वो बि जरूरत, बिल इम्कान, बिल दवाम और बिल फेल के साथ ताबीर करते हैं। तो कुल मुअज्जहात जिनसे मनातिका बहस करते हैं वो 15 हैं भाई, उनमें से 8 बसाइत हैं यानी 8 बसीत हैं और 7 मुरक्कबात हैं। बसीत वो मुअज्जहात जिनमें सिर्फ ईजाब हो या सिर्फ सल्ब हो, जबकि मुरक्कब जो होगा उसमें ईजाब और सल्ब दोनों होंगे एक ही कजिए के अंदर, ईजाब भी होगा और सल्ब भी होगा तो उसको मुअज्जह मुरक्कबा कहेंगे। और अगर मुअज्जह के अंदर सिर्फ ईजाब जिक्र है, जैदुन काइमुन बिल इम्कानी, तो जैद के लिए क्याम का सबूत जिक्र है तो इसको क्या कहेंगे, मुअज्जहा बसीता। या सिर्फ नफी जिक्र हो जैसे जैदुन लैसा बिकाइमिन बिल इम्कानी, तो देखो यहां सिर्फ नफी जिक्र है तो इसको क्या कहेंगे, मुअज्जहा बसीता। तो मुअज्जहात बसाइत वो हैं जिनमें सिर्फ ईजाब जिक्र हो या सिर्फ नफी जिक्र हो, जबकि मुरक्कबा वो हैं जिनमें एक ही कजिए के अंदर नफी भी जिक्र होगी और ईजाब भी जिक्र होगा। और फिर इन्होंने आपको यह भी बतलाया था कि जिहत जो है अगर मादे के मुताबिक हुई तो कजिया सादिक होगा, और अगर जिहत मादे के मुताबिक ना हुई तो कजिया काजिब होगा, क्योंकि जिहत है दाल और मादा कजिया क्या है, मदलूल, तो दाल मदलूल के मुताबिक होगा तो कजिए को सादिक कहेंगे, और अगर दाल मदलूल के मुताबिक नहीं तो इसको काजिब कहेंगे। मसलन देखो, देखो जैद जब खारिज में खड़ा होता है तो आप कहते हैं जैदुन कायमुन, तो ये आपका कजिया सादिक है, क्योंकि क्योंकि ये कजिया दलालत कर रहा है किस चीज पर, कि वाकई में जैद के लिए क्या साबित है, कयाम साबित है। तो यहां दाल और मदलूल एक जैसे हैं, दाल भी क्या बतला रहा है कि कयाम जैद के लिए है, और मदलूल भी क्या है, नफ्सुल अमर में भी कयाम किसके लिए साबित है, जैद के लिए, तो हम कहते हैं कजिया सादिक है, यानी ये निस्बत वाकई के मुताबिक है। और अगर आपने कहा जैदुन कायमुन और जैद वाकई में बैठा है तो फिर क्या कहेंगे कि आपका कजिया काजिब है। तो इसी तरह ये जो कजिया में जो जिहत जिक्र होती है, अगर ये जिहत नफ्सुल अमर और वाकई के मुताबिक है तो इसको कजिया सादिका कहेंगे, और अगर ये नफ्सुल अमर और वाकई के मुताबिक नहीं है तो फिर इसको कजिया काजिबा कहेंगे। जैसे देखो अल इंसान हैवान, इंसान क्या है, हैवान है। अब मुझे बताइए इंसान के लिए हैवान होना जरूरी है या मुमतनिया है या मुमकिन है या तीन जमानों में से किसी जमाने में है, मादा कजिया क्या है यहां पर, इंसान के लिए हैवान होना जरूरी है, जो भी इंसान होगा वो क्या होगा, हैवान। तो मसलन मैं भी कहता हूं अल इंसान हैवान उन बे जरूरती, इंसान के लिए हैवान होना जरूरी है, लाजिम है, वाजिब है। भाई तो देखो जिहत कजिया मुताबिक हो गई किसकी, मादे कजिया की, तो इस कजिया को क्या कहेंगे, सादिक कहेंगे। और अगर जिहत कजिया मादे कजिया के मुताबिक ना हो तो उसको काजिब कहेंगे। या दूसरी मिसाल ले लें, दूसरी मिसाल ले लें, मसलन मैं कहता हूं कुल्लो इंसानिन कातिबुन, हर इंसान कातिब है। एक है किताबत की सलाहियत, वो तो हर इंसान में अल्लाह ने रखी है, लेकिन यहां किताबत की सलाहियत ना मुराद लें, बिलफेल किताबत लें, यानी वाकई बिलफेल क्या करे, हाथ से कोई चीज लिखे। तो अब मैं कहता हूं कुल्लो इंसानिन कातिबुन, हर इंसान हाथ से किताबत करने वाला है। अब मुझे बताइए हर इंसान का हाथ से किताबत करना जरूरी है, मुमतना है या मुमकिन है? मुमकिन है, इम्कान है, अगर सीख लेगा तो फिर हाथ से लिख सकता है। तो मालूम हुआ नफ्सुल अमर में और वाकई में इंसान के लिए जो बिलफेल किताबत है यानी हाथ से लिखना वो मुमकिन है। नफ्सुल अमर और वाकई में वो क्या है, मुमकिन है। तो कजिए में मुझे यूं कहना चाहिए कुल्लो इंसानिन कातिबुन बिल इम्कानी, लेकिन मैं बिल इम्कान की बजाय कह देता हूं बिल जरूरती, यूं कहूं मैं कह देता हूं बिद्दवामी, कुल्लो इंसान इन कातिबुन बिद्दवामी, हर इंसान किताबत करने वाला है, हाथ से लिखता है, बिद्दवाम हर वक्त। क्या हर वक्त हर इंसान लिखता रहता है? नहीं। तो देखो मादा कजिया क्या था, बिल इम्कान, और जिहत में क्या ले आया, बिद्दवाम ले आया। तो देखो जिहत कजिया मादा कजिया के मुताबिक नहीं तो इस कजिए को क्या कहेंगे, काजिब कहेंगे। तो कुल्लो इंसानिन कातिबुन बिल इम्कान कहें तो ठीक, और बिल जरूरत या बिल दवाम कहें तो ये दुरुस्त नहीं है, तो फिर ये कजिया काजिब होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा अब भाई मिसालें लिख लें, आगे मुअज्जहात आ रहे हैं, कुछ हमने मुख्तसरन मतन में भी पढ़ लिए थे, लेकिन ये आठ बसाइत हैं, इन सारों की मिसालें लिख लें, इंशाल्लाह फिर समझना आसान हो जाएगा। हर एक की हम मिसाल लिख लेंगे, एक एक मिसाल, एक ईजाबी और एक सलबी भाई, एक जिसमें ईजाब होगा एक जिसमें सलब होगा। ऊपर वैसे लिख लें मुअज्जहात बसाइत भाई, मुअज्जहात बसाइत, बसाइत आखिर में तो है भाई, तोज़वा जी। पहला है जरूरिया मुतलका जी, मिसालें लिखें भाई, कुल्लो इंसानिन हैवानुन बे जरूरती, जल्दी जल्दी लिखिए भाई, कुल्लो इंसानिन हैवानुन बे जरूरती, ये ईजाब की मिसाल हो गई। अब सलब वाली लिखें, लाशई अमीन अल हजरी बी इंसानिन बे जरूरती, लाशई अमीन अल हजरी बी इंसानिन बे जरूरती, लाशई अमीन अल हजरी बी इंसानिन बे जरूरती। अगला लिखें मशरूता आम्मा, मशरूततुन आम्मतुन, मशरूततुन आम्मतुन, लिखिए भाई, कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिई, कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिई बिज़रूरति, बिज़रूरति मादाम कातिबन, मादाम कातिबन। कज़िया सालिबा की भी मिसाल लिख लें, लाशई अमीन अल कातिबी, लाशई अमीन अल कातिबी बिसाकिनिल असाबिई, असाबिअ स्वाद के साथ है, लाशई अमीन अल कातिबी बिसाकिनिल असाबिअ बिज़रूरती, बिज़रूरती मादामा कातिबन, बिज़रूरती मादामा कातिबन, मादामा कातिबन, लिख लिया भाई। क्या लिखा? पहला, कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिअ बिज़रूरति मादामा कातिबन, और सालिबा लिखा लाशय अमिनल कातिबी बि साकिनिल असाबिअ बिज़रूरति मादामा कातिबन। अगला लिखिए भाई, वक्तियह मुतलका, वक्तियह मुतलका लिखिए भाई। कुल्लु कमरिन मुनखसिफुन, कुल्लु कमरिन मुनखसिफुन, मीम नून खा सीन और फा, कुल्लु कमरिन मुनखसिफुन बेजरूरती, बेजरूरती वक्त हैलूलतिल अर्जी, वक्त हैलूलती, हैलूला हा या लाम वो और फिर लाम और गोलता है। वक्त हैलूलतिल अर्जी बैनहू व बैन शमसी, बैनहू व बैन शमसी लिख लिया। कुल्लु कमरिन मुनखसिफुन बिजरूरती वक्त हैलूलतिल अर्जी बैनहू व बैन शमसी। सालिबा की मिसाल भी लिखें, लाशय अमिनल कमरी, लाशय अमिनल कमरी बिमुनखसिफिन, लाशय अमिनल कमरी बिमुनखसिफिन बिजरूरती, बिजरूरती वक्त तरबीई, वक्त, वक्त लंबी ता है और आगे अत तरबीय अलिफ लाम ता है दो नुक्तों वाली रा, वक्त तरबीय। आगे लिखिए मुंतशिरा मुतलका, मुंतशिरा मुतलका इसकी मिसाल लिखिए, कुल्लु इंसानिन मुतनफ्फिसुन, नफस सांस को कहते हैं फा के फतहा के साथ, कुल्लु इंसानिन मुतनफ्फिसुन, मुतनफ्फिस सांस लेने वाला, कुल्लु इंसानिन मुतनफ्फिसुन बिज़रूरती, बिज़रूरती वक्तम मा, वक्तन तनवीन है आखिर में, वक्तन दो जबर और अलिफ, मा साथ मा भी लिख दें, मीम अलिफ मा, वक्तम मा, वक्तन मा। सालिबा की मिसाल लिखिए, लाशय अमिनल इंसानी बिमुतनफ्फिसिन, लाशय अमिनल इंसानी बिमुतनफ्फिसिन बिज़रूरती, बेजरूरती वक्तन, वक्तन मा, मीम अलिफ मा, वक्तम मा। देखा वक्तन के आखिर में नून है तनवीन वाला, वो नून मीम होकर मीम में इदगाम हो जाएगा, तो पढ़ेंगे कैसे? वक्तम मा। ये मिसालें फिर देख लें, कुल्लु इंसानिन मुतनफ्फिसुन बेजरूरती वक्तम मा, लाशय अमिनल इंसानी बिमुतनफ्फिसिन बिज़रूरती वक्तम्मा। आगे लिखिए दाइमा मुतलका, दाइमा मुतलका, कुल्लु फलकिन मुतहर्रिकुन बिद्दवामी, कुल्लु फलकिन मुतहर्रिकुन बिद्दवामी। सालिबा की मिसाल लिखिए, लाशय अमिनल फलकी, लाशय अमिनल फलकी बिसाकिनिन, लाशय अमिनल फलकी बिसाकिनिन, बिसाकिनिन नून के नीचे तनवीन है, बिद्दवाम, बिद्दवाम लाशय अमिनल फलकी बिसाकिनिन बिद्दवाम लिख लिया। दोबारा देखें, कुल्लु फलकिन मुतहर्रिकुन बिद्दवाम, लाशय अमिनल फलकी बिसाकिनिन बिद्दवाम। अगला लिखिए उर्फिया आम्मा, उर्फिया आम्मा, कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिअ, कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिअ बिद्दवामी, बिदवामी मादामा कातिबन, मादामा कातिबन। सालिबा लिखिए, लाशय अमिनल कातिबी बिसाकिनिल असाबिई, लाशय अमिनल कातिबी बिसाकिनिल असाबिई। बिदवामी, बिदवामी, बिदवामी मादामा कातिबन, मादामा कातिबन। लिख लिया, फिर सुने, कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिई बिदवामी मादामा कातिबन। और सालिबा है, लाशय अमिनल कातिबी बिसाकिनिल असाबिई बिदवामी मादामा कातिबन। अगला लिखें भाई, मुतलका आम्मा, मुतलका आम्मा। कुल्लु इंसानिन जाहिकुम बिलफिअली, कुल्लु इंसानिन जाहिकुन, कुल्लु इंसानिन जाहिकुन बिलफिअली, बिलफिअली। सालिबा लिखें, लाशय अमिनल इंसानी बिजाहिकिन, लाशय अमिनल इंसानी बिजाहिकिन बिलफिअली, बिलफिअली। लिख लिया, कुल्लु इंसानिन जाहिकुन बिलफिअली, लाशय अमिनल इंसानी बिजाहिकिन बिलफिअली। आगे लिखें भाई, मुमकिना आम्मा, मुमकिना आम्मा, मुमकिना आम्मा। कुल्लु नारिन हारतुन, कुल्लु नारिन, कुल्लु नारिन हारतुन, रा मुशद्दद है, हारतुन बिल इम्कानिल आम्मी, बिल इम्कानिल आम्मी। और सालिबा भी लिखें, लाशय अमीनन नारी, लाशय अमीनन नारी बिबारी दिन, बिबारी दिन बिल इम्कानिल आम्मी, बिल इम्कानिल आम्मी। लिख लिया, कितने हो गए? आठ पूरे हो गए, आठ पूरे हो गए। हां, तो ये आठ बसायत उनकी मिसालें आपने लिख ली। आखिर में एक छोटी सी बात भी वो साथ ही लिख लें ताकि आपको याद रहे, जरूरिया मुतलका और दायमा मुतलका बिल्कुल एक जैसे हैं, जरूरिया मुतलका और दाइमा मुतलका बिल्कुल एक जैसे हैं। जरूरिया मुतलका में बिस जरूरत की कैद है और दाइमा मुतलका में बिस दवाम की कैद, जरूरिया मुतलका में बिस जरूरत की कैद है और दाइमा मुतलका में, और दाइमा मुतलका में बिदवाम की कैद है। बात समझ में आ रही है? आगे अलग सतर लिखिए। इसी तरह मशरूता आम्मा, इसी तरह मशरूता आम्मा और उर्फिया आम्मा बिल्कुल एक जैसे हैं, इसी तरह मशरूता आम्मा और उर्फिया आम्मा बिल्कुल एक जैसे हैं। मशरूता आम्मा में भी जरूरत की कैद है, मशरूता आम्मा में भी जरूरत की कैद है और उर्फिया आम्मा में भी दवाम की कैद। लिहाजा, लिहाजा एक ही मिसाल में सिर्फ कैद बदल देंगे तो वो दूसरे की मिसाल बन जाएगी, लिहाजा एक ही मिसाल में सिर्फ कैद बदल दें, सिर्फ कैद बदल दें तो वो दूसरे की मिसाल बन जाएगी। बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, अब इन मिसालों को जरा समझ लो। ये कापी अपने सामने रखें और ये जो मैंने मिसालें लिखवाई इनसे इन बसाइत को अच्छी तरह समझ लें, फिर इंशाल्लाह शरा में सिर्फ तर्जमा रह जाएगा, वो हम तर्जमा कर लेंगे। भाई बसाइत इन्होंने आपको बतलाया वो आठ हैं भाई, और बसाइत वो कजिए हैं, वो कजिए मुअज्जहा हैं जिनके अंदर सिर्फ ईजाब जिक्र हो या सिर्फ सल्ब जिक्र हो, यानी यूं कहें नफी जिक्र हो, और अगर ईजाब और सल्ब दोनों जिक्र हो तो उसको मुरक्कबा कहेंगे और उनका जिक्र आगे आएगा। और इनमें से मैंने बतलाया था मनातिका के नजदीक चार जो हैं, चार जिहतें मुतबर हैं, एक को भी जरूरत से ताबीर करते हैं, एक को बिल इम्कान से, एक को बिल दवाम से, और एक को बिल फेल से। बे जरूरत का माना यह है कि यह निस्बत जरूरी है, बिल इम्कान का माना यह है कि यह निस्बत मुमकिन है, और बिल दवाम का माना है यह निस्बत दायमी है, और बिल फेल का माना है यह निस्बत तीन जमानों में से किसी जमाने में है। देखो मैंने बात और मुख्तसर कर दी, निस्बत का लफ्ज बोल दिया, यह ईजाब को भी शामिल है, सल्ब को भी। पहले तो बार बार यह कहना पड़ता था कि एक चीज का सबूत होगा दूसरी चीज के लिए या एक चीज की नफी होगी, तो दो किस्म की निस्बतें थी, एक ईजाबी और एक सलबी। तो सिर्फ निस्बत बोल दो, ये निस्बत उसमें दोनों आ गई, चाहे ईजाबी हो चाहे सलबी हो। तो ये निस्बत जो है इसमें निस्बत ईजाबी भी आ गई और निस्बत सलबी भी। अगर निस्बत जरूरी हो तो इसको किससे ताबीर करेंगे, बिल जरूरत से। अगर निस्बत इम्कानी हो तो बिल इम्कान से, अगर दायमी हो तो बिल दवाम से, और अगर तीन जमानों में से किसी जमाने में हो तो बिल फेल के साथ उसको ताबीर करेंगे। तो जब निस्बत जरूरी हो तो इसको बिल जरूरत से ताबीर करते हैं, और मैंने कल आपको बताया था कि यह जरूरत तीन किस्म पर है, या तो जरूरत जात के एतबार से होगी, या जरूरत वसफ के एतबार से होगी, या जरूरत वक्त के एतबार से होगी। याद आया कल क्या मैंने जिक्र किया था कि यह जरूरत या जात के एतबार से होगी, या वसफ के एतबार से, या वक्त के एतबार से। जात के एतबार से यानी जब तक जात मौजू है यह निस्बत जरूरी है, वसफ के एतबार से यानी जब तक यह वसफ उनवानी है यह निस्बत जरूरी है। तवज्जो है, यह निस्बत कभी जात के एतबार से जरूरी होती है, यानी जब तक जात मौजू है यह निस्बत जरूरी है जो कजिए में बयान हो रही है, और कभी कभी वसफ के एतबार से यानी मौजू को जिस वसफ के साथ जिक्र किया गया है जब तक यह वसफ है इसके लिए निस्बत जरूरी है। मैं अभी तफसील बयान करता हूं आगे भी, भाई मिसालें भी हैं, खूब अच्छी तरह आप समझ जाएंगे। और कभी निस्बत जो है वक्त के एतबार से जरूरी होती है, और फिर वक्त कभी वक्त मुतायन जिक्र होता है और कभी वक्त गैर मुतायन। अगर वक्त मुतायन के एतबार से निस्बत जरूरी हो तो वह और किस्म है, और अगर वक्त गैर मुतायन के एतबार से निस्बत जरूरी हो तो वह और किस्म है। तो जो पहली चार किस्में हैं उनमें जरूरत आएगी, पहली चार किस्में जो मैंने लिखवाई उनमें उनमें यह जिक्र होगा कि यह निस्बत जरूरी है। कौन कौन से पहले चार हैं? जरूरिया मुतलका, मशरूता आम्मा, वक्तिया मुतलका और मुंतशिरा मुतलका। नजर है मिसालों पर, पहली किस्म क्या? जरूरिया मुतलका, दूसरा मशरूता आम्मा, तीसरा वक्तिया मुतलका, और चौथा मुंतशिरा मुतलका। ये चार जो हैं इनमें बिल जरूरत की कैद आएगी, और मैंने बताया ये बिल जरूरत कभी जात के एतबार से होती है, कभी वसफ के एतबार से, और कभी वक्त के एतबार से। और फिर वक्त में दो सूरतें हैं, कभी वक्त मुतायन जिक्र होगा और कभी वक्त गैर, यानी कभी वक्त मुतायन के अंदर निस्बत जरूरी होगी और कभी वक्त गैर मुतायन में निस्बत जरूरी होगी। तो ये चार किस्में देखा, अभी आपको आसानी से याद हो जानी चाहिए। जरूरिया मुतलका, जिसमें जरूरिया मुतलका पहला है, मैंने बताया जरूरत कितनी एतबार से हो सकती है, जात वसफ या फिर वक्त मुतायन या वक्त गैर मुतायन, चार। तो पहले किस्म में आएगा निस्बत जरूरी है मौजू की जात के एतबार से, दूसरी में आएगा कि यह निस्बत जरूरी है मौजू के वसफ के एतबार से, तीसरे में आएगा कि यह निस्बत जरूरी है वक्त मुतायन के एतबार से, और चौथे में आएगा कि यह निस्बत जरूरी है वक्त गैर मुतायन के एतबार से। नहीं तवज्जो में रखल, नहीं समझ में आई बात, यह जरूरत कितनी किस्म की? चार। कभी यह जरूरत होगी किस एतबार से? जात के एतबार से, यह पहले में आएगा। कभी यह जिक्र होगा कि यह निस्बत जरूरी है किस एतबार से? वसफ के एतबार से, यह दूसरे में आएगा। कभी यह जिक्र होगा कि यह निस्बत जरूरी है वक्त मुतय्यन के एतबार से, यह तीसरे में आएगा। कभी यह बयान होगा कि यह निस्बत जरूरी है वक्त गैर मुतय्यन में, तो यह चौथे में आएगा। तो पहला क्या है? जरूरिया मुतलका। दूसरा क्या है? मशरूता आम्मा। तीसरा क्या है? वक्तिया मुतलका। और चौथा क्या है? मुंतशिरा मुतलका। बार बार मैं तकरार करवाऊंगा, बस आपने तवज्जो से बैठना है, इंशाल्लाह बिल्कुल आपको हिफ़्ज़ हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो जरूरियां मुतलका पहली किस्म कर रहे हैं। पहली किस्म में क्या बयान होगा? इधर देखिए, इधर देखिए, मैंने बयान कर दिया, मुझे बताइए जरूरियां मुतलका में क्या बयान होगा? कि यह निस्बत जरूरी है कब तक? जब तक जात मौजू मौजूद है। यह निस्बत जात के एतबार से जरूरी है, किसके लिए? मौजू के लिए। मसलन मैं कहता हूं अल इंसान हैवान। इंसान क्या है? हैवान है। मुझे बताइए इंसान के लिए हैवान होना जरूरी है या मुमकिन है? जरूरी है। क्या इंसान हैवान के बगैर हो सकता है? नहीं। तो यहां इंसान की जात ही तकाजा करती है कि इसके लिए हैवान जरूर साबित है, इसके लिए हैवान होना जरूरी है। इंसान हो और हैवान ना हो, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान की हकीकत ही क्या है? हैवान नातिक। तो जरूरिया मुतलका में क्या जिक्र होगा? कि यह निस्बत, तवज्जो से, यह निस्बत जरूरी है जब तक जात मौजू, जब तक जात मौजू मौजूद है। यह निस्बत जरूरी है जब तक जात मौजू मौजूद। मिसाल मैंने क्या लिखवाई, जरा मिसाल देखें। कुल इंसानिन हैवान बिस जरूरती, हर इंसान का हैवान होना जरूरी है। कब तक? जब तक इसकी जात है। जब भी इंसान होगा वो हमेशा क्या होगा? हैवान होगा। इंसान हो और हैवान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसान की जात ही क्या चाहती है? उसको क्या होना चाहिए? हैवान होना चाहिए। तो इस कजिए में देखो, मिसाल पे नजर है, क्या मिसाल लिखवाई? कुल इंसानिन हैवान, हर इंसान क्या है? हैवान बेस जरूरती, यानी उसके लिए हैवान होना जरूरी है। और किस एतबार से जरूरी है? जात के एतबार से। किस एतबार से? जात के एतबार से। कभी जरूरी होगा जात के एतबार से, कभी वसफ के एतबार से, और कभी वक्त मुतय्यन के एतबार से, और कभी वक्त गैर मुतय्यन के एतबार से। तो जरूरिया मुतलका में क्या बयान होगा? कि यह निस्बत जरूरी है। निस्बत इजाबी भी हो सकती है, सलबी भी, दोनों को शामिल है। यह निस्बत जरूरी है जब तक जात मौजू मौजूद है। जब तक? जब तक इंसान है उसका हैवान होना जरूरी है। इंसान ना हो फिर तो अलग बात है, लेकिन इंसान होगा तो हैवान होना जरूरी है। कुल इंसान इन हैवान, ये जो हैवान होने की निस्बत की जा रही है किसकी तरफ? इंसान की तरफ। ये निस्बत जरूरी है किस एतबार से? जात के एतबार से ही, इंसान की जात ही इसका तकाजा करती है। तो कुल इंसान इन हैवान भी जरूरत ही, हर इंसान का हैवान होना जरूरी है। यह है, ये है जरूरिया मुतलका। और इसी में सालिबा बना लें। सालिबा क्या था? ला शै अमीन अल हजरी बे इंसानीन, कोई पत्थर इंसान नहीं है बे जरूरती, जरूरी तौर पर, यकीनी तौर पर। बे जरूरत का मैंने बताया था, बे जरूरत का तर्जमा बदीही तौर पे भी कर सकते हो। कोई भी पत्थर इंसान नहीं है बदीही तौर पर, यूं कह लो कोई भी पत्थर इंसान नहीं है यकीनी तौर पर, यूं कहो कोई भी पत्थर इंसान नहीं है जरूरी तौर पर। ला शै अमीन अल हजर भी इंसान, कोई पत्थर इंसान नहीं है। देखो हर पत्थर से इंसान होने की नफी कर दी, और ये निस्बत जरूरी है। ये निस्बत क्या है? किस एतबार से? जात मौजू के एतबार से। जब वो पत्थर है तो इंसान नहीं हो सकता भाई। जिस चीज को आपने मौजू बनाया है वो अगर क्या है? पत्थर है, तो वो इंसान नहीं हो सकता। इंसान और पत्थर एक दूसरे की जिद है। जो इंसान है वो पत्थर नहीं, जो पत्थर है वो इंसान नहीं है। तो इसमें जरूरत जिक्र हुई किस एतबार से? जात के एतबार से। अब पूरे कजिया जरूरिया मुतलका की तारीफ करें। किसे कहेंगे जरूरिया मुतलका? वो कजिया मुवज्जहा है जिसमें यह जिक्र हो कि यह निस्बत जरूरी है जब तक जात मौजू मौजूद है, यह निस्बत जरूरी है जब तक जात मौजू मौजूद है। कोई मुश्किल है? बिल्कुल आसान है, परेशान नहीं होना। बताइए, फिर बताइए, कजिया जरूरिया मुतलका किसे कहते हैं जिसमें यह जिक्र हो कि यह वाली निस्बत जो उसमें बयान हो रही है, चाहे ईजाब वाली है चाहे सल्ब वाली है, जिसमें यह जिक्र हो कि यह वाली निस्बत जरूरी है, कब तक? जब तक जात मौजू मौजूद है। उसके बाद अगली मिसाल है मशरूता आम्मा। मशरूता आम्मा की क्या मिसाल आपने लिखी? कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिअ बिज़रूरती मादामा कातिबन। तर्जमा सुनो, हर कातिब की उंगलियां हरकत करती हैं बिज़रूरती जरूरी जरूरी तौर पर, मादामा कातिबन जब तक वो कातिब है। हर कातिब की उंगलियां हरकत करती हैं यकीनी तौर पर जब तक वो कातिब है। देखो मौजू क्या है, कुल्लु कातिबिन, ये कातिब ये है वस्फ़े उनवानी, ये यूं कहें ये है उनवान मौजू, और ये इसके अंदर जात मौजू को जिक्र किया गया है या वस्फ़े मौजू को, वस्फ़े किताबत को जिक्र किया गया है। कुल्लु कातिबिन, और हर कातिब के लिए मुतहर्रिकुल असाबिअ, हर कातिब क्या है? मुतहर्रिकुल असाबिअ है, यानी उसकी उंगलियां हरकत करती हैं बेजरूरती यकीनी तौर पर, मादाम कातिबन जब तक वो कातिब है, जब तक वो लिख रहा है, जो भी कातिब है जब तक वो लिख रहा है उसकी उंगलियां यकीनी तौर पर हरकत करती हैं। तो ये है मशरूता आम्मा, इसमें भी जरूरी बयान किया गया, हर कातिब की उंगलियों के लिए हरकत करना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी किस एतबार से है, उस कातिब की जात के एतबार से या उसके वस्फे किताबत के एतबार से? कातिब भाई इंसान होगा, इंसान की जात तो तकाजा नहीं करती कि उसकी उंगलियां हर वक्त हरकत करती रहें, लेकिन हां उसका वस्फे किताबत तकाजा करता है, जब तक वो किताबत कर रहा है, लिखना चूंकि हाथ से है तो हाथ की उंगलियां हरकत करती रहेंगी। तो हर कातिब की उंगलियां हरकत करती हैं यकीनी तौर पर, जरूरी तौर पर, कब तक? जब तक यह वसफ उसके लिए है, जब तक उसके लिए। देखो पिछले कजिए में क्या था, इधर देखो, यह निस्बत जरूरी है जब तक जात मौजू मौजूद है, और अब क्या जिक्र होगा, यह निस्बत जरूरी है, यह जो उंगलियां हरकत करने की निस्बत की जा रही है किसकी तरफ, कातिब की तरफ, ये निस्बत जरूरी है जब तक उसके लिए यह वसफ उनवानी है, यानी जब तक वो कातिब है, मादाम कातिबन जब तक वो कातिब है। तो यहां पर भी ये वाली निस्बत जरूरी है, और कब तक जरूरी है, जब तक ये वसफ जरूरी है। तो यहां पर इस निस्बत में जरूरी होने को बयान किया गया, और ये जरूरी होना मौजू की जात के एतबार से है या उसके वसफ के एतबार से है? वसफ के एतबार, वसफ किताबत के एतबार से है उंगलियों का हरकत करना, जात के एतबार से नहीं है। तो इसको मशरूता आम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मशरूता आम्मा। मशरूता क्यों कहते हैं आपको आगे चलकर यह खुद भी बताएंगे, क्योंकि इसमें शर्त लगाई गई है कि वस्फे उनवानी की वजह से जरूरी है यह चीज। कातिब के लिए क्या जरूरी करार दिया गया? उंगलियों का हरकत करना। कातिब का वसफ जिक्र किया या नहीं उनवान में? तो ये कातिब होने की वजह से इसके लिए ये वाली निस्बत जरूरी है। जो उंगलियां हरकत करने की निस्बत कर रहे हैं हम किसकी तरफ? कातिब की तरफ। ये किस वजह से है? उसके इस वस्फे किताबत की वजह से है। तो इसमें चूंकि शर्त लगाई जाती है जरूरी होने की, मशरूता आमा में भी जरूरत आ गई या नहीं? कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिअ बिज़रूरती, देखो बिज़रूरत आ गई किसमें? मशरूता आमन, और ये जरूरी है ये निस्बत किस शर्त पर? जब तक ये वसफ उनवानी है, जात के एतबार से नहीं। ये वसफ खत्म होगा तो ये निस्बत भी खत्म हो जाएगी। वहां जात के एतबार से था, कुल्लो इंसानिन हैवानुन बे जरूरती, वहां इंसान के लिए हैवान होना जरूरी था जात के एतबार से, और यहां हर कातिब के लिए मुतहरिकुल असाबिया होना जरूरी है वसफ के एतबार से। तो इसमें वसफ की शर्त है, इसमें किस चीज की शर्त है, इसलिए इसको मशरूता आम्मा कहते हैं। इसमें जरूरत को तो जिक्र किया जाता है, लेकिन यह जरूरी होना क्यों होता है, जात की वजह से या वसफ की वजह से, वसफ। तो इसमें जरूरी होना वसफ की वजह से है, गोया वसफ की शर्त है इसके अंदर, यह चीज इसके लिए जरूरी है, लेकिन शर्त क्या है, यह वसफ भी इसके अंदर हो। हर कातिब क्या है, मुतहरिकुल असाबिया है, लेकिन किस शर्त पर, कि यह क्या हो, कातिब हो, यानी जात के एतबार से नहीं, इस वसफ की शर्त पर है। तो मशरूता आम्मा को मशरूता आम्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें यह बयान किया जाता है कि यह निस्बत जरूरी है जब तक मौजू के लिए वसफ उनवानी साबित है। बात समझ में आ गई। इसी से सालिबा भी देख लें, लाशई अमीनल कातिबी भी साकिनिल असाबिया, कोई कातिब साकिनुल असाबिया नहीं, यानी किसी कातिब की उंगलियां साकिन नहीं, बिस जरूरती यकीनी तौर पर, मा दाम कातिबन, जब तक वो कातिब है। यानी ये निस्बत, ये जो सल्ब वाली है, ये निस्बत जरूरी है जब तक मौजू के लिए ये वाला वस्फे उनवानी साबित है। अगला देखिए भाई, अगला है वक्तिया मुतलका। वक्तिया मुतलका में क्या बयान किया जाता है, ये निस्बत जरूरी है वक्ते मुआयन में, तवज्जो है, फिर दोहराओ, जरूरिया मुतलका में क्या बयान किया जाता है, ये निस्बत जरूरी है जात मौजू की वजह से, फिर दोहराओ, जरूरिया मुतलका में क्या जिक्र करते हैं, कि ये निस्बत जरूरी है, जरूरत का लफ्ज आएगा ना, तो ये निस्बत जरूरी है जात मौजू की वजह से, बस यूं को मुख्तसर, ये निस्बत जरूरी है जात मौजू की वजह से। मशरूता आम्मा में क्या कहेंगे, ये निस्बत जरूरी है वस्फ मौजू की वजह से, या यूं कहे वस्फ उनवानी की वजह से। और वक्तिया मुतलका में क्या कहेंगे, ये निस्बत जरूरी है वक्त मुआयन में, ये निस्बत जरूरी है वक्त मुआयन में। और मुंतशिरा आम्मा में क्या कहेंगे, ये निस्बत जरूरी है वक्त गैर मुआयन में। तो वक्तिया मुतलका की मिसाल कर लें, देखिए भाई क्या मिसाल लिखवाई थी मैंने, कुल्लु कमरिन मुनखसिफुन बिजरूरती वक्त हैलूलतिल अर्जी बैनहू व बैन शम्सी। मैंने आपको बतलाया था कि सूरज आग का बहुत बड़ा गोला है, आग का बना हुआ गोल जिस्म है, और उससे रोशनी हर तरफ फैलती है, और यही रोशनी जमीन और चांद पर पड़ती है, तो ये भी रोशन मालूम होते हैं। ये जो चांद हमें रात को चमकता हुआ दिखाई देता है, ये इसकी अपनी रोशनी नहीं है, ये इस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो जमीन और चांद भी रोशन हैं, लेकिन वो रोशनी सूरज से हासिल करते हैं। और मैंने बताया था कि ये जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, पूरे साल में सूरज के गिर्द ये एक चक्कर लगा लेती है, और ये जो पूरे साल में जमीन चक्कर लगाती है, इसी की वजह से चारों मौसम बनते हैं, सर्दी गर्मी बहार और खजां, ये जो चार मौसम बनते हैं ये जमीन की सालाना हरकत की वजह से है। और एक जमीन जो है वो अपने महवर पर लट्टू की तरह घूम रही है, जैसे लट्टू घूमता है तेजी से, या जैसे यूं कहें जैसे साइकिल का पहिया है, एक उसका मरकज है और पहिया उसके गिर्द घूमता रहता है, आप पैडल चलाते हैं वो पहिया घूम रहा है, लेकिन एक ही मरकज उसका है। जमीन भी इसी तरह, जमीन गोल गेंद की तरह है, ये भी अपने मरकज के गिर्द घूमती रहती है, दरमियान में जो इसका महवर है उस पर घूमती रहती है। और ये जो हरकत है जमीन की, इसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। एक तरफ से देखो सूरज की रोशनी आ रही है और उसके सामने जमीन जो है घूम रही है, तो जो हिस्सा जमीन का सूरज के सामने आ जाता है वहां दिन होता है, और फिर वो हिस्सा घूमते घूमते दूसरी तरफ आता है तो अंधेरे में आ जाता है, सूरज दूसरी तरफ है और ये पीछे अंधेरे में आ गया, तो उसकी वजह से फिर दिन और रात बनते हैं। और ये 24 घंटे में एक चक्कर जमीन पूरा करती है, इसीलिए 24 घंटे में दिन और रात बदलते हैं। और ये जो चांद है ये जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है, जमीन के गिर्द, और ये चांद जमीन के गिर्द पूरे एक महीने में एक चक्कर लगा लेता है, 29 दिन के लगभग में ये क्या करता है, जमीन के गिर्द एक चक्कर लगा लेता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, और जमीन को रोशनी कहां से आ रही थी? सूरज से। सामने दरमियान में चांद आ गया तो अब सूरज दिखाई नहीं देगा, चांद का साया जमीन पर पड़ेगा। मसलन आपकी तरफ एक तरफ से रोशनी आ रही है, साथी दरमियान में कोई खड़ा हो गया तो अब रोशनी आपकी तरफ नहीं पहुंचेगी, साथी का साया आप पर पड़ेगा। इसी तरह जमीन पर रोशनी कहां से आ रही थी? सूरज से। दरमियान में कौन आया? चांद। तो अब चांद का साया जमीन पर पड़ेगा और सूरज जमीन से छुप जाएगा, इसको सूरज ग्रहण कहते हैं। और फिर यही चांद घूमते घूमते दूसरी तरफ आएगा जमीन के, तो कभी जमीन बीच में आ जाएगी चांद और सूरज के। चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, सूरज जहन में समझ में आ रही है? चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, तो चांद घूमते घूमते किसके दरमियान आ गया? जमीन और सूरज के दरमियान। तो चांद का साया जमीन पर पड़ेगा और सूरज जमीन वालों को नजर नहीं आएगा, छुप जाएगा या उसकी रोशनी मधम हो जाएगी, उसमें मुख्तलिफ कैफियतें होती हैं, तो उसको सूरज ग्रहण कहते हैं। और फिर चांद घूमते घूमते जमीन की दूसरी तरफ आ गया और वो जमीन अब बीच में आ गई सूरज के और चांद। सामने से गाड़ी की लाइट पड़ रही हो, गाड़ी की लाइट पड़ रही हो आप पर, और सामने कोई चीज आ जाए तो देखो वो गाड़ी की लाइट आपसे छुप जाएगी और चीज का साया आप पर पड़ेगा। और फिर दूसरी सूरत क्या कि वो चीज घूमते घूमते पीछे की जानिब आई तो अब आप उसके और रोशनी के बीच में आ गए, अब आपका साया उस चीज पर पड़ेगा। तो इसी तरह चांद जब हरकत करते करते जमीन के पीछे आ जाता है तो जमीन बीच में आ जाती है किसके? चांद और सूरज के। तो जमीन का साया सीधा चांद पर पड़ता है, तो इसको चांद ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? चांद ग्रहण। तो कभी सूरज ग्रहण लगता है और कभी चांद ग्रहण। सूरज ग्रहण में चांद बीच में आ गया जमीन और सूरज के, और चांद ग्रहण में जमीन बीच में आ गई किसके? सूरज और चांद के। तो इस तरह यह ग्रहण लगता है भाई। तो इन्होंने क्या बयान किया देखिए, मिसाल देखिए। कुल्लु कमरिन मुनखसिफुन, हर चांद जो है उसको ग्रहण लगता है बेजरूरती यकीनी तौर पर। कब? वक्त हैलूलतिल अर्ज़ बैनहू व बैन शम्सी, जिस वक्त जमीन हाइल हो जाए। वक्त हैलूलतिल अर्ज़, जिस वक्त जमीन हाइल हो जाए। बैनहू व बैन शम्सी, उस चांद और सूरज के दरमियान। जब जमीन चांद और सूरज के दरमियान हाइल हो जाए तो उस वक्त चांद को यकीनन यकीनन लाजमी तौर पर ग्रहण लगेगा। जमीन का साया किस पर पड़ेगा? बीच में कौन आई? जमीन। बीच में कौन आई? जमीन। और किसके दरमियान? चांद और सूरज के। बैनहू व बैन शम्सी, चांद और सूरज के बीच जमीन आ गई तो जमीन का साया किस पर पड़ेगा? चांद पर। तो ये क्या होगा? चांद ग्रहण। तो कहते हैं कुल्लु कमरिन मुनखसिफुन बि जरूरती वक्त हैलूलतिल अर्ज बैनहू व बैन शम्सी, हर चांद जो है उसको ग्रहण लगता है यकीनी तौर पर जिस वक्त जमीन हाइल हो जाए चांद और सूरज के बीच में। खजिया सालिबा देखें, वला शय अमिनल कमरी बि मुनखसिफिन बि जरूरती वक्त तरबीई, इसको भी समझ लें। तरबिया भाई, तरबिया, तवज्जो से भाई। देखिए चांद महीने के शुरू में बारीक सा नजर आता है, इसको हिलाल कहते हैं। हिलाल इब्तिदाई तो तीन दिन तक यह हिलाल कहलाता है, उसके बाद यह कमर कहलाता है और यह बड़ा होता चला जाता है, यहां तक कि चौदहवीं रात को पूरा चांद आपको दिखाई देता है। इसको अरबी में बदर कहते हैं। क्या कहते हैं? बदर, यानी चौदहवीं रात का चांद। अच्छा अब मुझे बताइए, चौदहवीं रात को कितना चांद आपको नजर आता है? जी पूरा चांद। आप कहेंगे पूरा चांद नजर आता है? नहीं भाई, आपको आधा चांद नजर आ रहा है। चांद एक गोल जिस्म है, गेंद जैसा है, गेंद जैसा, और ये पूरा गोल आपको नजर आ रहा है, लेकिन गेंद की पिछली जानिब, चांद की पिछली जानिब तो आपको नजर नहीं आ रही। बात समझ में आ गई? तो इसको हम कहते तो यूं है कि चांद पूरा नजर आ रहा है, लेकिन दर हकीकत इस वक्त हमें आधा चांद नजर आ रहा है जो हमारी तरफ है चांद का रुख, और चांद का जो पिछला हिस्सा है दूसरी तरफ को वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो मालूम हुआ चौदहवीं रात को चांद हमें कितना दिखाई देता है, आधा दिखाई देता है, पूरा नहीं भाई, यानी बाकी हिस्सा उसका पिछली जानिब है। और गेंद, गेंद आपके सामने रखें तो एक वक्त में एक ही जानिब आपको उसकी नजर आ सकती है, पूरे चारों तरफ से वो नजर नहीं आ सकती। तो चौदहवीं रात में चांद हमें पूरा दिखाई देता है या आधा?
आधा।
तो देखो ये चांद यकम से शुरू होता है बढ़ना और 14 तारीख को पूरा होता है, और 7-8 तारीख को चांद हमें आधा नजर आता है। तवज्जो है, आधा चांद नजर आता है, ये आधा है, हम इसको कहते हैं आधा चांद है, लेकिन दर हकीकत वो कितना है? चौथा हिस्सा। कितना भाई? जब पूरा नजर आ रहा था तो वो दरअसल कितना था?
आधा।
और जब आधा नजर आ रहा है तो वो दरअसल कितना है? चौथा है। ये है तरबीअ भाई, ये क्या है? तरबीअ। चांद का चौथा हिस्सा हमें नजर आ रहा है। देखो सामने से गाड़ी की रोशनी पड़ रही हो, गाड़ी की रोशनी पड़ रही हो, और उसके सामने एक गेंद रख दें कि ये मसलन जमीन है, और दूसरा गेंद रखें मसलन ये चांद है, और ये चांद अब जमीन के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता आप इसको हरकत देंगे, तो देखो जब बिल्कुल जमीन और सूरज के दरमियान चांद आएगा तो चांद का साया किस पर पड़ेगा भाई? चांद आ गया जमीन और सूरज के बीच में, रोशनी किधर से आ रही है? सूरज से। तो चांद का साया फिर किस पर पड़ेगा? जमीन पर। तो ये सूरज ग्रहण हुआ, और फिर चांद अब आहिस्ता आहिस्ता घूमते हुए फिर जमीन के बिल्कुल पीछे आ जाएगा। अब जमीन बीच में आ गई किसके? सूरज और चांद के। जमीन का साया चांद पर पड़ेगा तो इसको क्या कहते हैं? चांद ग्रहण। तो चांद जमीन के बिल्कुल सामने हो तो सूरज ग्रहण, चांद जमीन के बिल्कुल पीछे हो तो चांद ग्रहण, और चांद जमीन के दाएं या बाएं हो तो यह है तरबीअ भाई। ये क्या है? सामने सूरज है और जमीन और चांद साथ साथ हैं, जमीन के दाएं तरफ चांद है या जमीन के बाएं तरफ चांद है, तो देखो यह है तरबीअ। इस वक्त हमें आधा चांद नजर आएगा। क्यों आधा नजर आ रहा है? क्योंकि चांद का जो रुख सूरज की तरफ है वो उसमें से आधा हमारी तरफ है, आधा दूसरी तरफ है, तो वो हमें आधा नजर आ रहा है, और चांद के जिस हिस्से पर साया है जो सूरज से छुपा हुआ है उसमें से आधा हमारी तरफ है, आधा दूसरी तरफ। तो एक हिस्से पे चांद के अंधेरा है वो हमें नजर नहीं आ रहा, और एक हिस्सा नजर आ रहा है। सूरत नहीं समझ में आई? सूरत समझ में आ गई? चांद जब बिल्कुल जमीन और सूरज के दरमियान आ जाए, सामने से सूरज की रोशनी आ रही है, जमीन इस तरफ है, और बीच में कौन आ गया? चांद। चांद तो घूम रहा है जमीन की गिर्द, वो चांद आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जैसे ही आगे निकलेगा महीना शुरू हो गया। अब चांद हर रोज थोड़ा थोड़ा नजर आता रहेगा, बढ़ते बढ़ते ये चांद जब जमीन के बिल्कुल यूं समझे बाएं तरफ आ गया, किस तरफ? जमीन के बाएं तरफ आ गया। अब जमीन और चांद एक दूसरे के साथ साथ हैं और बिल्कुल सामने सूरज है, तो यह है तरबीअ का वक्त। फिर ये चांद घूमते घूमते जमीन के पीछे चला जाएगा और फिर चांद ग्रहण होगा, और फिर ये चांद घूमते घूमते जमीन के दाएं तरफ आएगा पूरा चक्कर काटकर। तो देखो जिस वक्त चांद बिल्कुल बाएं तरफ था यानी 7 या 8 तारीख को, और इसी तरह चांद जब आ जाएगा दाएं तरफ यानी 20-21 तारीख को, 20-21 तारीख को घूमते घूमते इसने पूरा चक्कर लगाना है। यह है तरबीअ का वक्त। इसमें चांद का हमें, हम कहते हैं हमें आधा चांद नजर आ रहा है, लेकिन दर हकीकत यह कितना होता है? चौथा हिस्सा। इसको तरबीअ कहते हैं। तो 7-8 तारीख को यह तरबीअ अव्वल है, और यह जो 20-21 तारीख को है यह है तरबीअ सानी। इसको क्या कहते हैं? तरबीअ सानी कहते हैं। तो 7-8 को भी आधा चांद नजर आएगा, लेकिन दरअसल यह चौथा हिस्सा है, आधा नहीं है। और 20-21 तारीख को भी आधा चांद नजर आएगा, लेकिन दरअसल यह आधा चांद नहीं है बल्कि चांद का चौथा हिस्सा है, तो यह तरबीअ कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा अब मुझे बताइए चांद ग्रहण कब लगता है? जब जमीन चांद और सूरज के बीच में आ जाए। सूरज ग्रहण कब लगता है? जब चांद जमीन और सूरज के बीच में आ जाए। और तरबीअ के वक्त में उस वक्त तो चांद जमीन के या दाएं तरफ होगा या बाएं तरफ होगा और सामने सूरज होगा, तो इसमें ग्रहण लग सकता है?
नहीं,
इसमें ग्रहण नहीं लग सकता। बात समझ में आ गई, यही बयान करने लगे हैं। कहते हैं वला शय अमीन अल कमरी बि मुनखसिफिन, और कोई भी चांद जो है उसको ग्रहण नहीं लगता, बेजरूरती यकीनी तौर पर, वक्त तरबीय, किस वक्त? तरबीय के वक्त, यानी जब चांद जमीन के दाएं या बाएं हो। भाई और मैंने ये बतला दिया कि ये 7-8 और 20-21 के लगभग है, भाई 20-21 तारीख के लगभग है जो कमरी महीना है। तो कहते हैं वला शय अमीन अल कमरी बि मुनखसिफिन बि जरूरती वक्त तरबीय, भाई देखो किसी चांद को ग्रहण नहीं लगता यकीनी तौर पर, किस वक्त? तरबीय के वक्त, चाहे तरबीय अव्वल हो चाहे तरबीय सान, तो तरबीय के वक्त चांद को ग्रहण न लगना जरूरी है, न लगना जरूरी है। देखा जरूरत का बयान आ गया, और एक वक्त मुतय्यन के अंदर, तो यह निस्बत जरूरी है वक्त मुअय्यन में। अच्छा अगली मिसाल किसकी थी? मुंतशिरा मुतलका। मुंतशिरा मुतलका की मिसाल मैंने आपको लिखवाई थी, कुल्लु इंसानिन मुतनफ्फिसुन बिज़रूरती वक्त अम्मा, और सालिबा की मिसाल थी लाशय अमिनल इंसानी बि मुतनफ्फिसिन बिज़रूरती वक्त अम्मा। भाई देखिए मैंने आपको कल भी बतलाया था कि जो सांस लेना है, ये जो हम सांस अंदर खींचते हैं ये है सांस लेना, और फिर जो सांस बाहर निकालते हैं ये तो उसी हवा को हम खारिज कर रहे हैं, ये सांस लेना नहीं। तो यूं कहें थोड़ी देर के लिए हम सांस लेते हैं, अंदर सांस खींचते हैं, और फिर ये जो बाहर निकाल रहे हैं इस वक्त हम सांस नहीं ले रहे, ये तो उसी हवा को हम क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं, तो इस वक्त सांस नहीं ले रहे। तो कुछ हम सांस लेते हैं फिर नहीं लेते, रुक जाते हैं, यानी बाहर निकालते हैं उसको, फिर हम सांस लेते हैं और फिर सांस उसको बाहर निकालते हैं तो सांस नहीं लेते। तो देखिए कुल इंसान इन मुतनफ्फिसुन, हर इंसान सांस लेने वाला है, बेजरूरती जरूरी तौर पर, यकीनी तौर पर, इंसान होगा तो सांस जरूर लेगा, तो इंसान के लिए सांस लेना जरूरी है। कब? फी वक्त इम्मा, किसी न किसी वक्त में। इसमें कोई मुतय्यन वक्त है?
नहीं,
वक्त मुतय्यन नहीं है। हां किसी वक्त सांस लेना जरूरी और किसी वक्त सांस न लेना जरूरी है, इसके बगैर वो जिंदा ही नहीं रहेगा। तो इंसान के लिए किसी वक्त सांस लेना जरूरी और इंसान के लिए किसी वक्त सांस न लेना जरूरी है। तो देखो इसमें भी जरूरत बयान हुई, सांस लेना जरूरी है, लेकिन क्या कोई मुतय्यन वक्त था?
नहीं,
वहां पीछे मुतय्यन वक्त जिक्र हुआ था, उस मुतय्यन वक्त में ग्रहण लगना जरूरी और एक मुतय्यन वक्त में ग्रहण न लगना जरूरी, और यहां सांस लेना और न लेना उसका कोई मुतय्यन वक्त नहीं। हां सांस लेते हैं कभी और कभी सांस हम नहीं लेते, मुसलसल यह सिलसिला चलता है, लेकिन इसमें वक्त मुतय्यन नहीं है। बात समझ में आ गई। अच्छा ये जो चार थे इनमें जरूरत का जिक्र था, बे जरूरत थे, तो जरूरत कितनी किस्म की हो गई? चार किस्म। कभी जरूरत किस एतबार से होगी? जात के एतबार से। ये किस में होगी? जरूरिया मुतलका में। कभी जरूरत वसफ के एतबार से होगी, ये किस में होगी? मशरूता आम्मा में। और कभी जरूरत किसी वक्त मुअय्यन में होगी तो इसको क्या कहेंगे? वक्तिया मुतलका। और कभी जरूरत होगी वक्त गैर मुतय्यन में, इसको क्या कहेंगे? मुंतशिरा मुतलका। मुंतशिरा मुतलका, देखो मुंतशिरा नाम से ही पता चल रहा है इसमें वक्त मुतय्यन नहीं है बल्कि मुंतशिर है। बल्कि क्या माना मुंतशिर? यानी गैर मुअय्यन है वक्त, गैर एक चीज दूसरी चीज के लिए जरूरी है, इंसान के लिए सांस लेना जरूरी है लेकिन किसी वक्त मुअय्यन में नहीं बल्कि वक्त गैर मुअय्यन में। इसलिए जिसमें मुतय्यन वक्त था उसको वक्तिया मुतलका कहते हैं, और जिसमें वक्त मुतय्यन नहीं है गैर मुतय्यन है उसको मुंतशिरा मुतलका कहते हैं। मुंतशिरा का क्या माना? गैर मुअय्यन, गैर मुअय्यन यानी उसमें वक्त मुतय्यन नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए जरा फिर अब मतन देख लें, फिर मतन देख लें। ये चार किस्में आपने पढ़ ली भाई। कहते हैं फइन कान अल हुक्मु फीहा बिजरूरतिन निस्बती, मतन पर नजर है फइन कान अल हुक्म फीहा बिजरूरत निस्बती, अगर हुक्म हो फीहा ऐ फिल कजियती, अगर कजिया में हुक्म हो बिजरूरत निस्बती निस्बत के जरूरी होने का, मा दाम ज़ातुल मौज़ू मौजूदतन, जब तक ज़ात मौज़ू मौजूद है। मैंने आपको बताया था अगर कजिए में निस्बत के जरूरी होने को बयान किया जाए तो यह जरूरी होना चार किस्म पर हो सकता है, कभी जरूरी होगा जात के एतबार से, कभी जरूरी होगा वसफ के एतबार से, कभी जरूरी होगा वक्त मुआयन के एतबार से, और कभी जरूरी होगा वक्त गैर मुआयन के एतबार से। वही बयान कर रहे हैं, कहते हैं फइन कान अल हुक्म फीहा बिजरूरत निस्बती, अगर कजिए के अंदर हुक्म हो निस्बत के जरूरी होने का, मादाम जातुल मौजू मौजूदतन, जब तक जात मौजू मौजूद है, फजरूरियतुन मुतलकतुन, तो वो कजिया जरूरिया मुतलका है, और मादाम वसफुहु, या जब तक वो वसफ है, जब तक वो यानी पीछे फइन कान अल हुक्म फीहा बिजरूरतिन निस्बती, इस सारे को हर एक से जोड़ना है, मादाम वसफुहु का अतफ है मादाम जातुल मौजू पर, और अगर कजिए में यह हुक्म हो कि निस्बत जरूरी है मादाम वसफुहु, जब तक वो वसफ है, मफा मशरूततुन आम्मतुन, तो वो कजिया मशरूता आम्मा है, और फी वक्त मुअय्यनिन, और अगर कजिए में यह जिक्र हो कि निस्बत जरूरी है फी वक्त मुअय्यनिन, किसी वक्त मुअय्यन में, फवक्तियतुन मुतलकतुन, तो वो कजिया वक्तिया मुतलका है, और गैर मुअय्यनिन फमुंतशिरतुन मुतलकतुन, और अगर कजिए में यह जिक्र हो कि निस्बत जरूरी है वक्त गैर मुअय्यन में, तो वह कजिया मुंतशिरा मुतलका है। अब आइए शरा में भाई, قوله فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة إلى آخره، ماتن کا قول فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة، کہتے ہیں قد يكون الحكم في القضية الموجهة، کبھی کبھار حکم ہوتا ہے قضیہ موجہہ میں، کہ بأن النسبة الثبوتية أو السلبية ضرورية، کہ یہ جو نسبت ثبوتی یا سلبی ہے یہ ضروری ہے، کیا معنی ضروری، اي ممتنعت الانفكاك عن الموضوع، कि मौजू से इसका जुदा होना मुमतन है नामुमकिन है। आय मुमतनियातुल इन्फिकाक अनिल मौजूई, यानी यह मुमतनियातुल इन्फिकाक है, इसका जुदा होना मुमकिन नहीं, अनिल मौजूई किससे, मौजू से, अला अहदी अरबाती औजुहिन, चार वजहों में से किसी एक वजह पर, किसी एक वजह पर उसका जुदा होना मुमकिन नहीं है। अल अव्वल, अब वो चार वजह जिक्र करेंगे कि या तो जात के एतबार से जुदा होना मुमकिन नहीं, या वसफ के एतबार से, या वक्त मुआयन के एतबार से, या वक्त गैर मुआयन। तो कहते हैं अल अव्वल, पहली वजह कि अन्नहा जरूरियतुन, कि वो निस्बत जरूरी है, मादामा जातुल मौजू मौजूदतन, जब तक जात मौजू मौजूद है, नहु कुल इंसान इन हैवान उन बेजरूरती, हर इंसान हैवान है यकीनी तौर पर, वला शय अमिन अल हजर भी इंसान इन बेजरूरती, और कोई भी पत्थर इंसान नहीं है यकीनी तौर पर, फयुसम्मल कजियतु हीन इजिन जरूरियतन मुतलकतन, तो फयुसम्मल कजियतु, तो कजिए को कहते हैं हीन इजिन उस वकत, उस वकत किस वकत, जब उसमें यह जिक्र हो कि ये निस्बत जात मौजू के लिए जरूरी है, तो उस वक्त कजिए को जरूरिया मुतलका कहते हैं। तर्जमा समझ में आ रहा है, फयुसम्मल कजियतु हीन इज़िन जरूरियतन मुतलकतन, तो उस वक्त उस कजिए को जरूरिया मुतलका कहते हैं। अच्छा, जरूरिया क्यों कहते हैं, मुतलका क्यों कहते हैं, अब वजह बयान करने लगे, लिश्तिमालिहा अला जरूरती, क्योंकि यह कजिया जरूरत पर मुश्तमिल है, इसमें क्या जिक्र हो रहा है, बे जरूरत जिक्र हो रहा है। अच्छा, ये तो जरूरिया तो इसलिए कहते हैं, ये मुतलका क्यों कहते हैं, मुतलका तो उसको कहते हैं जिसमें कोई कैद ना हो, तो कहते हैं इसको भी मुतलका इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वस्फ उनवानी या वक्त की कैद नहीं। मशरूता आम्मा में किसकी कैद होती है, वस्फ उनवानी, और वक्तिया मुतलका और मुंतशिरा मुतलका में वक्त की कैद होती है, तो इसको जरूरिया मुतलका इसलिए कहते हैं, एक तो जरूरिया इसलिए क्योंकि इसमें बस जरूरत की कैद है, और मुतलका इसलिए क्योंकि इसमें वस्फ उनवानी या वक्त की कैद नहीं है। तो कहते हैं लिश्तिमालिहा अला जरूरती, इस वजह से कि यह जरूरत पर मुश्तमिल है। व आदमी तकीद जरूरती बिलवस्फिल उनवानी ये अविल वक्ती, और इस वजह से कि जरूरत जो है वह मुकैद नहीं है वस्फ उनवानी या वक्त के साथ। बात समझ में आ गई। असानी दूसरी वजह, अन्नहा जरूरीयतुन मादामल वस्फुल उनवानी साबितन लिजातिल मौजूई की निस्बत जरूरी है। चार वजहें थी ना, कजिए में यह बयान होगा कि यह निस्बत जात मौजू के लिए जरूरी है, और वह जरूरी होना कभी जात के एतबार से होगा जैसे जरूरिया मुतलका, और कभी वसफ के एतबार से, और कभी वक्त मुतायन, और कभी वक्त गैर मुतायन। तो जात के एतबार से गुजर गया, अब दूसरी किस्म आ गई। और दूसरी किस्म कि अन्नहा जरूरीयतुन, कजिए में यह बयान होगा कि यह निस्बत जरूरी है मादाम अल वस्फ उल उनवानी साबितन लिजातिल मौजूई, जब तक वह वस्फ उनवानी साबित है उस मौजू के लिए। नहु कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिअ बिज़रूरति मादाम कातिबन, हर कातिब जो है वह मुतहर्रिकुल असाबे है यकीनी तौर पर जब तक वह कातिब है। वला शय अमीनहु बिसाकिनिल असाबिअ बिज़रूरति मादाम कातिबन, और कोई भी कातिब जो है वह साकिनुल असाबिअ नहीं है यकीनी तौर पर जब तक वह कातिब है। तो यहां कातिब के लिए क्या साबित किया, मुतहर्रिकुल असाबिअ, यानी यह निस्बत उसके लिए जरूरी है जब तक उसके लिए वस्फ उनवानी साबित है। तवज्जो है, एक में कौन सी निस्बत है मुतहर्रिकुल असाबिअ वाली, और एक में कौन सी निस्बत है साकिनुल असाबे। तो मुतहर्रिकुल असाबिअ का इस बात जरूरी और साकिनुल असाबिअ की नफी जरूरी जब तक उसके लिए वस्फ उनवानी यानी वस्फ किताबत साबित है। फतुसम्मा हीन इज़िन मशरूतातन आम्मतन, तो उस वक्त कजिए को मशरूता आम्मा कहते हैं। भाई मशरूता आम्मा क्यों कहते हैं, कहते हैं लिश्तिरात जरूरत बिलवस्फिल उनवानी, क्योंकि जरूरत जो है उसकी शर्त लगाई गई है किसके साथ, वस्फ उनवानी के साथ। यानी कातिब के लिए मुतहर्रिकुल असाबिअ होना जरूरी है, कब जरूरी है, जब तक वस्फ उनवानी है। तो ये जो शर्त जरूरी होने की शर्त है वो किसके साथ है, वस्फ। तो ये जो जरूरत की जो है वो शर्त लगाई गई है वस्फ उनवानी की वजह से, वस्फ उनवानी के साथ लगाई गई है, इसलिए इसको मशरूता कहते हैं। अच्छा भाई आम्मा फिर क्यों कहते हैं मशरूता, तो न आम्मा, तो आम्मा की वजह बताएंगे कि आगे एक मशरूता खासा आ रहा है मशरूता, तो वह चूंकि मशरूता खासा है तो यह उसके मुकाबले में क्या है मशरूता आम्मा। तो कहते हैं वलिकौनी हादिहिल कजियती आम्मा मिनल मशरूततिल खासती कमा सतजीउ, और इस वजह से क्योंकि यह कजिया ज्यादा आम है मशरूता खासा के मुकाबले में, कमा सतजीउ जैसे कि अनकरीब आ जाएगा। असालिसु तीसरा, भाई कभी निस्बत जरूरी होती है किस एतबार से, वक्त मुतायन के एतबार से, वो बयान कर रहे हैं। कहते हैं वसालिसु अन्नहा जरूरीयतुन, और तीसरी वजह यह कि वह निस्बत जरूरी है फी वक्त मुआयन इन किसी वक्त मुआयन में। नहु कुल्लु कमरिन मुनखसिफुन बिजरूरती वक्त हैलूलतिल अर्ज़ बैनहू व बैन शम्सी, हर चांद जो है उसको ग्रहण लगता है यकीनी तौर पर जिस वक्त जमीन हाइल हो जाए उस चांद और सूरज के दरमियान। ये थी मुजिबा की मिसाल। आगे सालिबा की मिसाल, वला शय अमीन अल कमरी बि मुनखसिफिन बेजरूरती वक्त तरबीई, कोई भी चांद जो है उसको ग्रहण नहीं लगता यकीनी तौर पर वक्त तरबीई, जब तरबीअ का वक्त हो। फतुसम्मा हीन इज़िन वक्तियतम मुतलकतन, तो उस वक्त कजिए को वक्तिया मुतलका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वक्तिया क्यों कहते हैं और मुतलका क्यों कहते हैं, अब वजह भी जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं लितकीद जरूरती बिल वक्ती, इसलिए क्योंकि यहां पर जरूरत मुकैद है किसके साथ, वक्त के साथ। एक चीज जरूरी है किसी मुअय्यन वक्त में, तो लितकीद जरूरती बिल वक्ती, तो इसलिए इसको वक्तिया कहते हैं। और मुतलका क्यों कहते हैं, कहते हैं वादमी तकीद कजियती बिल लादवामी, इसलिए क्योंकि इस कजिए में लादवाम की कैद नहीं है। लादवाम की कैद आगे आएगा एक वक्तिया, सिर्फ इधर देखिए आगे कजिया मुरक्कबा आएगा उसमें लादवाम की भी कैद होगी। क्या होगी, ला दवाम, तो उसको वक्तिया कहेंगे। जब उसमें ला दवाम की कैद है तो वो क्या है? वक्तिया। और इसमें ला दवाम की कैद नहीं तो इसको वक्तिया मुतलका कहेंगे, यानी मुतलक है, इसमें कोई कैद ला दवाम वाली नहीं है। यह माना है लितकीद जरूरत बिल वक्त व आदमी तकीद कजियत बिल्ला दवामी, इसलिए क्योंकि यहां जरूरत जो है वह मुकैद है वक्त के साथ, और इसलिए क्योंकि यह कजिया ला दवाम के साथ मुकैद नहीं है इसलिए इसको वक्तिया मुतलका कहते हैं। वजह समझ में आ रही है? अर राबी और चौथी वजह, यानी जिसमें निस्बत जरूरी होती है, अर राबी और अन्नहा जरूरीयतुन फी वक्त मिनल औकाती, कि यह निस्बत जरूरी है फी वक्त मिनल औकाती, औकात में से किसी वक्त में, यानी किसी गैर मुअय्यन वक्त में, का कौलीना, जैसे हमारा कौल कुल्लो इंसान मुतनफ़िसुन बे जरूरती वक्त अम्मा, कि हर इंसान वो सांस लेने वाला है यकीनी तौर पर वक्त अम्मा किसी न किसी वक्त में, वला शय अमिनल इंसान भी मुतनफ़िसिन बे जरूरती वक्त अम्मा, और कोई भी इंसान जो है वो गैर मुतनफ़िस है यकीनी तौर पर वक्त अम्मा किसी न किसी वक्त में, फतुसम्मा मुंतशिरतन मुतलकतन, इस कजिए को मुंतशिरा मुतलका कहते हैं, लिकौनी वक्त जरूरत फीहा मुंतशिरतन, इस वजह से कि इसमें जरूरत का वक्त मुंतशिर है। जरूरी होना तो जिक्र हो रहा है लेकिन किसी मुअय्यन वक्त में नहीं है, बल्कि वो वक्त मुंतशिर है। भाई क्या माना वक्त मुंतशिर है? कहते हैं ऐ गैर मुअय्यन, यानी कि वो गैर मुअय्यन है। वह आदमी तकीद इलकजियत बिल्ला दवामी, और फिर इसको मुतलका क्यों कहते हैं? मुंतशिरा मुतलका कहते हैं आदमी तकीद इलकजियत बिल्ला दवामी, कि यह कजिया ला दवाम के साथ मुकैद नहीं है। आगे एक मुंतशिरा आएगा, एक कजिया कौन सा आएगा? मुंतशिरा, उसके अंदर ला दवाम की कैद है तो वो उसको मुंतशिरा कहते हैं, और इसमें कोई कैद नहीं तो इसको मुंतशिरा मुतलका कहते हैं। मुतलक का क्या माना? जिसमें कोई कैद ना हो, तो कहते हैं इसको मुंतशिरा मुतलका कहते हैं। लिकौनी वक्त जरूरत फीहा मुंतशिरतन ऐ गैर मुअय्यन, इसलिए क्योंकि इसमें जरूरत का वक्त मुंतशिर है यानी गैर मुअय्यन है। व आदमी तकीद अलकजियत बिल्ला दवामी, और मुतलका इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कजिया मुकैद नहीं है ला दवाम की कैद के साथ। तर्जमा अच्छी तरह समझ में आ गया। हासिल कलाम ये कि आज आपने चार मुअज्जहात बसाइत के बारे में पढ़ा। पहला क्या? जरूरिया मुतलका, दूसरा मशरूता आम्मा, तीसरा वक्तिया मुतलका, चौथा मुंतशिरा मुतलका। जरूरिया मुतलका में यह बयान होता है कि यह निस्बत जरूरी है जब तक ज़ात मौजू मौजूद है, और मशरूता आम्मा में क्या जिक्र होता है? कि यह निस्बत जरूरी है जब तक ये वस्फे उनवानी मौजूद है मौजू के लिए, और वक्तिया मुतलका में क्या बयान होता है? कि यह निस्बत जरूरी है किसी मुअय्यन वक्त में, और मुंतशिरा मुतलका में क्या बयान होता है? कि यह निस्बत जरूरी है किसी गैर मुअय्यन वक्त में। बात समझ में आ गई? चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।